डर। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि आस्था फर्श पर अपने कानों पर हाथ रखकर सिसक रही थी और अरमान उसे जानलेवा नजर से देख रहा था। अब आगे, आस्था फर्श पर अपने कानों पर हाथ रखकर सिसक रही थी और अरमान उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था। शायद ये दृश्य उन लोगों ने पहले भी देखा हुआ था और सबको वो सीन याद आने लगा जब अरमान ने आस्था को पहली बार अपने कमरे में देखा था और उस पर गोली चला दी थी। एक बार फिर ये दृश्य याद आने पर सब लोगों ने एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखना शुरू किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या कहें। वहीं दादाजी अरमान को नाराज नजरों से देखते हुए तुरंत ही आस्था के पास चले आए और उसके सर पर हाथ रख के चिंतित आवाज में बोले, आस्था बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? अब जैसे दादाजी ने थोड़ा भरे स्वर में ये पूछा, आस्था ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने सामने दादाजी को देखकर जल्दी से उसने दादाजी को गले से लगा लिया। फिर दादाजी ने आस्था के बालों में प्यार से हाथ फेरा और उसे थोड़ा शांत किया। तब तक नानी माँ चुपके से दरवाजा खोलकर यहाँ वहाँ देखने लगी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और जब उन्होंने सबको अरमान के कमरे में जल्दबाजी में जाते हुए देखा तो उन्हें भी अनजाना डर सताने लगा। अब देर न करते हुए वो अंश को गोदी में थामकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। नानी माँ को हाँफते हुए देखकर जल्दी से रश्मि ने आगे बढ़कर नानी माँ की गोदी से अंश को ले लिया और सभी के सभी लोग हैरानी से कभी आस्था को देख रहे थे तो कभी अरमान को। दादाजी ने जैसे तैसे आस्था को शांत कराया, तब तक नानी माँ भी वहां पहुंच गई और घबराई हुई आवाज में चिंतित होकर बोली, गोरी बिटिया, क्या हुआ तुम्हें? वहीं दादाजी तुरंत उठ खड़े हुए, अरमान को गुस्से में देखते हुए चिल्लाए, ये क्या बेहुदा हरकत थी अरमान? अब दादाजी को यूं अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखकर अरमान ने उन्हें तीखी नजरों से घूरा और वो गुस्से से बरस पड़ा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया? शुक्र मनाओ कि मैंने इस लड़की का भेजा नहीं उड़ाया। आपने देखा नहीं, ये मेरे कमरे में मौजूद थी। और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अरमान सिंघानिया के कमरे में आकर सो गई? इसको तो इसका जवाब देना ही होगा। ये कहते हुए अरमान बड़ा ही डेंजरस लग रहा था। अब अरमान के इतना बोलते ही सब लोग एक दूसरे की ओर बेबसी से देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी अरमान ऐसा कुछ करेगा। कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। वहीं आहान तो खुद को रोक नहीं पाया और अरमान की तरफ देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, अरे ये क्या हुआ? कहां तो भाई एक मिनट के लिए भी भाभी से दूर नहीं रह पाते थे, और अब देखो अपने कमरे में भाभी को देखते ही इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि भाई ने अपनी बीवी पर ही गोली चला दी। ये कैसे हो सकता है यार? आहान की बकबक अरमान को तो सुनाई नहीं दी, लेकिन बाकी सब आहान को इस तरह से देखने लगे मानो जैसे उन्होंने किसी बेवकूफ देख लिया हो। सबने आहान को नाराज नजरों से देखा और होंठ भींच लिए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वहीं ध्रुव आहान पर नाराज होते हुए उस पर बरस पड़ा, तुम इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है अरमान भैया पहले वाले अरमान भैया नहीं रहे, वो चेंज हो चुके हैं, तो बार बार वही बातें याद करके हमें गुस्सा क्यों दिलाते रहते हो? फिर ध्रुव ने आहान को सख्त नजरों से घूरते हुए चेतावनी दी, अगर अरमान भाई ने तुम्हें इस तरह से बड़बड़ाते हुए सुन लिया ना, तो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक की सारी गोलियां कहीं तुम्हारे भेजे में ना खाली कर दे, तो इसीलिए सोच समझ कर बोला करो। इतना कहकर ध्रुव चुप हो गया और आहान चिढ़कर देखने लगा। अब ध्रुव के इस तरह से डांटे जाने पर आहान सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए तुरंत रौनक के पीछे जाकर छुप गया और लड़खड़ाती आवाज में धीरे से फुसफुसाया, नहीं हवा हवाई, तुम तो मेरी बीवी हो ना, तो मुझे अरमान भाई से बचा लोगे ना? प्लीज मुझे बचा लेना, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। इतना बोलकर आहान तुरंत शांत हो गया। फिलहाल अब अरमान की बातें सुनकर दादाजी को कुछ समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दें। लेकिन ठीक उसी वक्त आस्था, जो गोली की आवाज से काफी डरी हुई थी और अब अरमान के चेहरे पर अपने लिए नफरत भाव देखकर अंदर से उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि आज उसके पति की आंखों में उसके लिए मोहब्बत का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। आस्था को कहीं न कहीं अरमान की आंखों में अपने लिए नफरत और एक उलझन साफ साफ दिखाई दे रही थी। कहीं न कहीं अरमान इस वक्त आस्था से कई सारे सवाल पूछना चाहता था। अरमान ने आस्था को ठंडी नजरों से देखा, फिर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भेज ली थी। कहीं न कहीं आस्था सिचुएशन को भांपते हुए अपने आसपास खड़े सभी लोगों को गौर से देख रही थी, क्योंकि सभी एक दूसरे की शक्ल को उलझन में देख रहे थे कि अब वो अरमान की बातों का क्या जवाब दें। लेकिन तब तक आस्था पूरी सिचुएशन को समझ चुकी थी, इसीलिए उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और अरमान के ठीक सामने जाकर बेबाकी से खड़ी हो गई और अपने दर्द को छुपाते हुए वो कड़वाहट से बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने ही मुझे अपने कमरे में आने की इजाजत दी थी, आखिरकार आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? आस्था के शब्द सुनते ही अरमान का चेहरा एक पल के लिए बदला। उसकी आंखों में कुछ न समझ आने वाली बात थी। अरमान पूरी तरह उलझन में था। फिर वो झल्लाकर सोचने लगा, मैं अरमान सिंघानिया, वो भी एक लड़की को अपने कमरे में आने की इजाजत दे दूं? भला ऐसा कैसे हो सकता है?
लेकिन तभी नानीमा मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्दी से आगे आई और अंश को आस्था की गोदी में देते हुए अगले ही पल बोली, अरे आस्था बिटिया, तुमने तो कहा था कि केवल कुछ ही देर का काम है और तुम काम खत्म करके जल्दी से आ जाओगी। देखो ना अंश कब से रो रहा है। अब ये सुनते ही सब उलझी हुई नजरों से अंश और नानी माँ को देखने लगते हैं। तभी नानी माँ ने आस्था को चुपके से कुछ इशारा किया और अचानक आस्था को केयरटेकर वाली बात याद आ गई और उसकी आंखें इधर उधर कुछ सोचते हुए घूमी और वो जल्दी से बात बदलते हुए जोश भरी आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे समझाया था आपके कमरे में आपका सब सामान बिल्कुल ठीक जगह रखने के लिए। बस मैं सोने से पहले आपका सब सामान और कल सुबह आप क्या कपड़े पहनेंगे उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सामान रखने के लिए आई थी और सारा काम खत्म करने के बाद मैं काफी थक गई थी, इसीलिए बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हालांकि आस्था ने अपनी आवाज पूरी तरह से शांत रखते हुए ये बात बताई थी, लेकिन अपने दिल के दर्द को छुपाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। कहीं ना कहीं सभी लोग तारीफ भरी नजरों से आस्था को देखने लगे क्योंकि आस्था ने बड़ी चालाकी से बात को घुमा दिया था। कहीं ना कहीं आस्था भले ही बड़े कॉन्फिडेंस से ये बातें बोल रही थी लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल कितना ज्यादा दुखी था ये बात सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका अपना पति जो उसका अपना होकर भी आज उसे पूरी तरह से पराया सा लग रहा था, बस यही गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिलहाल नानी माँ आगे बढ़ी और आस्था के सर पर हाथ रखकर सॉफ्टली बोली, बेटी आगे से ऐसी गलती मत करना, तुमने देखा नहीं मिस्टर सिंघानिया को कितना ज्यादा गुस्सा आता है, वो तुम पर गोली चला सकते थे, आगे से इस बात का ध्यान रखना। लेकिन दादाजी तुरंत अरमान पर फट पड़े, कम से कम पूरी बात का जान लेता बेवकूफ, और आइंदा अगर तूने घर में बंदूक चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू। दादाजी को अरमान की फीलिंग की परवाह करने का मूड नहीं था, इसीलिए दादाजी ने सबकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, बच्चों काफी रात हो गई है, चलो सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। दादाजी ने जैसे ही अरमान को नजरअंदाज करते हुए ये कहा, वैसे ही अरमान की आईब्रो से कुड़ गई और वो पूरी तरह से खामोश हो गया था।
लेकिन उस वक्त वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किसी लड़की को इस तरह से अपने कमरे में काम करने की इजाज़त दे सकता है। दादाजी का आदेश मिलने के बाद सब लोग जल्दी से चुपचाप अपने अपने पार्टनर के साथ वहाँ से खिसक गए। आस्था ने एक बार फिर अरमान की ओर तीखी नज़रों से देखा और बेमन से बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपका सारा सामान सेट करके रख दिया है, मैं अब चलती हूँ। ये बोलकर आस्था ने गहरी नज़रों से अरमान की ओर देखा और उसके बाद वो अंश को लेके नानी माँ के कमरे में आ गई। कहीं न कहीं आस्था आज अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसका पति जो कभी उस पर जान छिड़कता था, आज उसे पति ने अनजाने में उस पर गोली की बरसात कर दी। अरमान की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर आस्था का दिल तड़प उठा। वहीं अरमान अब थोड़ी देर तक अपनी सिगरेट का कश लेकर उसे पीने लगा। अब अरमान ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसने इस लड़की को अपने कमरे में आने की परमिशन क्यों दी, कि और वो लड़की इस तरह से बेखौफ होकर अरमान के कमरे में सो गई, क्योंकि अरमान तो लड़कियों की परछाई तक बर्दाश्त नहीं करता है, फिर ये लड़की आखिरकार है कौन और इसे मेरे बारे में ऐसी क्या क्या बातें पता है और किस हद तक पता है, जो बातें मैंने किसी को भी नहीं बताई वो भी इसे पता है, आखिरकार मैं एक अनजान लड़की को अपने सारे काम करने के लिए कैसे कह सकता हूँ, कैसे। अरमान पूरी तरह से कन्फ्यूज था और अपनी कन्फ्यूजन दूर भी करना चाहता था, लेकिन वो सीधे सीधे आस्था से सवाल पूछकर इस बात का उसे एहसास नहीं होने देना चाहता था कि अरमान भुलक्कड़ है, इसीलिए उसने गहरी सांस ली और सोचने लगा कि उसे खुद ही सारी बातें पता लगानी होंगी कि आखिरकार उसने इस लड़की को कितना और क्या क्या बताया है। ये सोचकर अरमान सीधा जाकर राजाओं की तरह अपने बेड पर बैठ गया। फिलहाल आस्था, जो कि नानी माँ के कमरे में आने के बाद अंश को देखते हुए चंचलता से बोली, सॉरी बेबी, मम्मा आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, आई एम रियली सॉरी। ये बोलकर उसने अंश के फोरहेड पर किस किया और उसे गोद में उठाकर बोली, पर क्या करो, मम्मा अभी आपके डेविल डैडी को लेकर परेशान है। ये बोलते हुए उसने अंश को सीने से लगा लिया और एक बार फिर आस्था की आंखों के किनारे भीग गए थे। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर हाथ रखा और ममता भरी आवाज में बोली, बिटिया परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी पर भरोसा रख। फिर उन्होंने बात बदलते हुए बताया, बेटा इस कमरे में भाई साहब ने पहले ही दो बेड डलवा दिए हैं, तो तुम अंश को लेकर आज आराम से यहीं सो जाना, लेकिन कल से तुम्हें अपने पति के बराबर वाले कमरे में रहना होगा ताकि तुम दामाद जी के आसपास रहकर उनका अच्छी तरह से ख्याल रख सको। कहीं न कहीं नानी माँ के शब्द सुनकर आस्था काफी खुश थी, क्योंकि वो खुद अरमान के आसपास रहना चाहती थी। उसने अपनी पलकें झपकाई और हाँ में सिर हिला दिया। वहीं अंश अपनी माँ की बाहों में आकर गहरी नींद में सो गया था। वहीं आस्था आंखें बंद करके लेटी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा पति मेरे पास आकर मुझे गले से लगाकर सो जाए, क्योंकि आस्था भले ही थोड़ी देर पहले थकी हुई थी और गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अब तो उसकी नींद पूरी तरह से भाग गई थी और अब बिना अरमान के वजूद के उसे नींद नहीं आने वाली थी।
अब आस्था पूरी तरह से बेचैन हो उठी और तुरंत ही उठकर बैठ गई। उसने देखा घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थीं, लेकिन आस्था की आंखों में दूर दूर तक नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो डेस्परेटली अपने पति को गले से लगाना चाहती थी। फिलहाल वो उठी, उसने देखा नानी माँ भी सो गई हैं और अंश भी आराम से सो रहा था, तो आस्था कुछ सोचते हुए बाहर हॉल में आ गई थी।